गुड मॉर्निंग। आज के प्रातःकालीन सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आपके साथ साथ आपके बीच में जो पधारे हैं हमारे वरिष्ठ राजयोगिनी आदरणीय उषा दीदी जी, उनका भी हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, सत्कार करते हैं। तो अभी का विषय है हमारा कॉल ऑफ टाइम, समय की पुकार क्या है। तो समय की पहचान देते हुए समय की पुकार क्या है ये स्पष्ट करने के लिए दीदी हमारे बीच में आए हैं, तो मैं उनकी पहचान दे दूं पहले आपको। दीदी जी 12 वर्ष की अल्पायु से ही इस ज्ञान मार्ग में चल पड़े और करीब पिछले 35 से भी अधिक वर्षों से समर्पित रूप से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आरंभ में आपने हैदराबाद, मुंबई जैसे स्थानों पर सेवाएं दी और करीब पिछले 25 से भी अधिक वर्षों से हेडक्वार्टर में बेस्ड हैं और यहीं से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और देश विदेश में भ्रमण करते हैं। प्रायः दीदी बाहर ही होते हैं, यहाँ एक प्रोग्राम में होते हैं, दूसरे प्रोग्राम के लिए फोन करो तो मैं बाहर हूँ कहते हैं, या बाहर होते हैं यहाँ प्रोग्राम में फोन करो तो मैं तो यहाँ हूँ, इतनी तारीख को पहुंचूंगी। तो बहुत अपने आप को बिजी रखते हैं, कि जितना हो सके जन जन तक ये संदेश पहुंच जाए, ताकि परमात्मा जो धरती पर आए कोई उससे इस समाचार से वंचित न रहे। तो बहुत आपकी प्रयास रहता है कि सब तक हम अथक होकर सेवाएं करते रहे। तो आप हेडक्वार्टर में जो हमारी पॉलिटिशियन विंग है उसके हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर है, और इसीलिए वो आज के दिन आए, वरना पहले दिन भी आ सकते थे लेकिन उधर प्रोग्राम में बहुत बिजी थे, तो आज का ही दिन था उनके पास। और दीदी ने बहुत अच्छी स्टडी की है रामायण की, गीता की, और उसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है उसको बहुत अच्छी रीति से आप स्पष्ट करते हैं। तो बाहर भी जब आप जाते हैं तो विशेषकर गीता का आध्यात्मिक रहस्य स्पष्ट करते हैं, उसमें आपकी बहुत अच्छी रुचि है। तो अनेक प्रतिभाओं से युक्त हमारी दीदी जी हमारे सामने अभी रखेंगी कि समय की पुकार क्या है। आदरणीय उषा दीदी जी,
ओम शांति। बहुत सुंदर अभी हम सभी ने एक गीत सुना, इस समय का पंछी उड़ता जाए, और समय के विषय में दुनिया में भी बहुत कुछ कहा हुआ है। मैनेजमेंट में भी सबसे इम्पोर्टेंट विषय अगर हो गया तो टाइम मैनेजमेंट है। लोग समय को मैनेज करना चाहते हैं और उसके लिए कई लोग टिप्स भी दे देते हैं कि सुबह जल्दी उठो, अपने दिन का प्लानिंग करो, जो प्रायोरिटी है वो पहले करना है, बाद में दूसरी चीज करो। एक दो चीज तो कर लेते हैं, उसके बाद कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती, कोई ऐसी समस्या आ जाती कि सारा समय उसी में चला जाता, और दिन के अंत में जब हम अपना टाइम टेबल देखते हैं तो एक दो चीज की होती है, फिर कहते हैं आज का दिन भी ऐसे ही निकल गया, कुछ नहीं हुआ। उसका कारण क्या है? कारण ये है कि हमने समय को समझा ही नहीं है, और समय को बिना समझे समय को मैनेज करना चाहते हैं तो कैसे होगा? समय को समझना जरूरी है कि ये समय की पुकार क्या है, समय क्या कहना चाह रहे हैं, और वर्तमान समय के हिसाब से कैसे अपने आप में वो प्रत्युत्तर देने की जरूरत है। समय के लिए जो दुनिया में कहा गया है, समय एक चक्र में चलता है, और समय का चक्र कभी बंद नहीं होता है, नित्य चलता है। वो चक्र में किस तरह से ये चक्र चलता है उसको हम समझेंगे, ताकि समय की मांग क्या है और उस अनुसार प्रत्युत्तर दे सकते हैं। किसी ने यही सही कहा है, समय बड़ा बलवान है, समय के आगे किसी का जोर नहीं चलता है। समय क्या कह रहा है? कहा जाता कि समय हमसे कोई ना कोई प्रतिउत्तर की मांग करता है। जब भी कोई समस्या आती है, कोई परिस्थिति आती है, कोई समय ऐसा आता है, तो वो समय हमसे क्या चाहता है? समय हमसे एक प्रत्युत्तर की मांग करता है कि अब इस समय में, इस परिस्थिति में, इस समस्या में हाउ एम आई गोइंग टू रिस्पॉन्ड, मेरा रिस्पॉन्स क्या रहेगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। तो समय हमसे एक रिस्पॉन्स मांगता है और समय के अनुकूल अगर रिस्पॉन्स दिया तो समय हमें आगे बढ़ा देता है। लेकिन अगर समय से विपरीत दिशा में नेगेटिव रिस्पॉन्स देते हुए आगे बढ़े तो समय अच्छे अच्छे को पछाड़ता भी है। तब कहा समय बड़ा बलवान है, समय के आगे किसी का जोर नहीं चलता है। बहुत सही ये भी किसी ने कहा है कि समय हमसे एक परिवर्तन की मांग करता है। जब भी कोई बात आती है समय के अनुसार तो समय चाहता है कि अब परिवर्तन हो जाए। तो समय की मांग क्या है? परिवर्तन। समय नित्य परिवर्तनशील है, एवरी मोमेंट इज चेंजिंग, हर घड़ी परिवर्तन हो रही है। तो समय की मांग भी हमसे यही है, परिवर्तन। तब किसी ने कहा इफ यू कैनॉट चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम विल फोर्स यू टू चेंज। समय हमें मजबूर करेगा परिवर्तन होने के लिए, और फिर भी अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो समय को दूसरे शब्द में काल भी कहा जाता है। वो काल तो क्या, महाकाल का रूप भी धारण कर लेता है और उस व्यक्ति के अस्तित्व को इस संसार से मिटा देता है। इतना बलवान है समय। इसीलिए समय जब भी कोई इशारा देता है, सिग्नल देता है, समय समय की सिग्नल्स को समझने की जरूरत है कि ये समय क्या कह रहा है। नहीं तो समय का पंछी उड़ता जाता है और उसके बाद अगर होश भी आया तो क्या फायदा, समय तो चला गया, वो समय दोबारा नहीं आता है। इसलिए कहा कि इस संसार में समय के साथ हर चीज परिवर्तनशील है, परिवर्तन कुदरत का नियम है, परिवर्तन होता आया है, होता रहेगा। तो समय की मांग भी हमसे परिवर्तन है, चेंज है ना। समय एक चक्र में चलता है और जब समय चक्र में चलता है तो समय के साथ हर चीज चक्र में चलती है। दिन और रात का चक्र है, नित्य चलता है। ऋतुओं का चक्र है, नित्य चलता है। मनुष्य जन्म पुनर्जन्म का चक्र है, नित्य चलता है। नेचर की साइकिल को देखे, पानी वेपोरेट होता है, बादल बनते, वो बादल बरसते हैं, फिर वो पानी नदियों के द्वारा समंदर में आ जाता है। ये साइकिल भी चलती रहती है। तो कुदरत की हर साइकिल नित्य चलती है, कोई भी साइकिल बंद नहीं होती है, ना उसकी बिगिनिंग है ना उसकी एंड है। दिन और रात का चक्र कब शुरू हुआ था? सुबह दोपहर। मनुष्य ने अपनी व्यवस्था को बनाने के लिए रात को 12 बजे के बाद दूसरा दिन कह दिया, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि 12 बजे ही दिन शुरू हुआ था। तो हर चक्र नित्य चलता है, ऐसे ये काल चक्र भी नित्य चलता है। ये चक्र भी कभी बंद नहीं हुआ है। हर चक्र की चार अवस्था जरूर होती है जिसमें से उसको गुजरना पड़ता है। दिन और रात के चक्र की भी चार अवस्था है, सुबह दोपहर शाम रात्रि, रात्रि के बाद पुनः सुबह होती है, क्योंकि ये चक्र है। ठीक इसी तरह ऋतुओं का चक्र भी नित्य चलता है, ग्रीष्म बरसात शीतकाल वसंत फिर ग्रीष्म आ जाता है। इसी तरह मनुष्य जन्म पुनर्जन्म का चक्र भी नित्य चलता है, उसमें भी चार अवस्था है, बचपन युवा गृहस्थ वृद्ध। इसी तरह ये काल चक्र में भी चार अवस्था है, जिसको कहते सतयुग त्रेता युग द्वापर युग कलयुग। कलयुग के बाद क्या होगा, पुनः सतयुग आता है। कई लोग सोचते हैं कि इतना घोर पापाचार का युग कलयुग सतयुग में कैसे बदल जाएगा, किसी मनुष्य का काम नहीं उसको बदलना। जिस तरह घोर अंधेरी अमावस्या की रात सुनहरी सुबह में अपने आप बदलती है, कोई चाहे या न चाहे, परिवर्तन नित्य है। कुदरत की रचना में इस तरह से सेटिंग है कि घोर अंधेरी अमावस्या की रात भी धीरे 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 सुनहरी सुबह में बदल जाती है। कोई सारी रात भी बैठ जाए देखने के लिए कि भोर कैसे निकलती है, भोर कब निकल आती है पता भी नहीं चलता। ठीक इसी तरह घोर पापाचार की दुनिया कलयुग भी सतयुग में बदलनी ही है, कोई चाहे या न चाहे। कुदरत की रचना में इस तरह से सेटिंग है कि धीरे 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 ये सतयुग की ओर चला जाएगा, चला ही जाना है। लेकिन हर चक्र की एक अवधि जरूर है, एक ड्यूरेशन पीरियड है, जिसमें वो साइकिल कंप्लीट होता है। जैसे दिन और रात का चक्र है, उसके लिए 24 घंटा है, उसी में ही उसको कंप्लीट होना है, कम ज्यादा समय नहीं लेता है। ऋतुओं का चक्र की अवधि है एक साल, एक साल में वो साइकिल कंप्लीट होता है। इसी तरह ये काल चक्र की भी अवधि है और वो है 5000 साल। लेकिन जब 5000 सुनते हैं तो कई लोगों के मन में कई प्रश्न खड़े हो जाते हैं, 5000 कहाँ से आया, किसने कहा, क्या प्रूफ है, शास्त्रों में तो एक एक युग लाखों साल के बता दिए, आप पूरा चक्र ही 5000 का कहते हैं, कैसे संभव है, कितने सारे सवाल हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं एक ही बात पूछूं कि शास्त्र में जो एक एक युग लाखों साल का बताया है, क्या उसका कोई सबूत है, है? कैसे मान लिया फिर बिना सबूत के? वैसे देखा जाए तो सबूत किसी चीज का नहीं है, 24 घंटे कहां से आए? जिसने भी कैलकुलेट किया दिन और रात के चक्र को, 60 सेकंड की एक मिनट बनाई, 60 मिनट का एक घंटा बना और इस तरह से 24 घंटे के अंदर बांट दिया। लेकिन अगर हम पूछे कि ये 60 फिगर किस हिसाब से लाए, ऑन व्हाट बेसिस, 100 सेकंड का एक मिनट क्यों नहीं बनाया, 100 मिनट का एक घंटा क्यों नहीं बनाया, 60 फिगर कहां से आया, या 50 बनाते थे कि 50 सेकंड की एक मिनट, 50 मिनट का एक घंटा, न 50 न 100, 60 फिगर कहां से आया, कोई प्रूफ दे सकता है? 50 का बनाते थे तो घंटे बढ़ जाते थे, 24 के बदले 25 हो जाता था। या 100 सेकंड की एक मिनट बनाते थे तो घंटे कम हो जाते थे, ड्यूरेशन तो उतना ही रहना था, चाहे उसको 20 घंटे में बांटो, 24 घंटे में बांटो, 25 घंटे में बांटो, वो तो कम ज्यादा होने वाला नहीं। लेकिन 24 ही क्यों, 25 क्यों नहीं, 20 क्यों नहीं? कभी सवाल किया, कभी सबूत मांगा, कैसे एक्सेप्ट कर लिया? जो साल का चक्र, साल के चक्र की अवधि क्या है, ड्यूरेशन क्या है, 365 डेज, उसका कोई सबूत है? मॉडर्न साइंस ने कहा कि पृथ्वी को 365 दिन लगता है चक्कर लगाने में, और हमने स्वीकार कर लिया। कभी सबूत मांगा कि गिव अस द प्रूफ? और इस तरह से पूरा इंग्लिश कैलेंडर बन गया 12 मास का, और सारी दुनिया ने उसको स्वीकार कर लिया। लेकिन अगर हिंदू कैलेंडर को देखा जाए तो हिंदू कैलेंडर भी एक साइंस पर बना है, और हिंदू कैलेंडर के हिसाब से साल में कितने दिन होते? 3 साल के बाद एक अधिक मास आता है, एक मास पूरा बढ़ता है, तो साल में कितने दिन होते हैं? हम हिंदू है ना? हाँ, हिंदू है। हाँ, तो साल में कितने दिन होते हैं? 354 दिन, 354। अब हिंदू कैलेंडर सही है या इंग्लिश कैलेंडर सही है, कितने दिन का डिफरेंस पड़ गया? कभी कोई सबूत मांगा कि ये सही है कि ये सही है? लेकिन फिर भी दुनिया ने इंग्लिश कैलेंडर को मान्यता दी, और भारत वाले दोनों कैलेंडर लेकर चल रहे हैं। दुनिया का कारोबार इंग्लिश कैलेंडर पर करो, और अपना त्योहार मुहूर्त जो निकालना है हिंदू कैलेंडर पर, है ना? जबकि हिंदू कैलेंडर के अनुसार पूर्णमासी और अमावस्या जब आती है, पूरा समुंदर का पानी उछलता है, इतना एक्यूरेट चलता है। फिर भी दुनिया ने मान्यता इंग्लिश कैलेंडर को दी, हिंदू कैलेंडर को नहीं दिया, है ना? हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ही ये प्रेडिक्ट किया जाता है कि भाई ये महीने में ये फलाने दिन को हम सूर्य ग्रहण होगा, चंद्र ग्रहण होगा, है ना? इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से नहीं बता सकते कि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण कब होगा। इतना एक्यूरेट, एक सेकंड का भी उसमें फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी दुनिया ने मान्यता किसको दी? इंग्लिश कैलेंडर को। और हमने कभी उसके लिए ये नहीं कहा कि भाई हमारा कैलेंडर ही मान्यता होनी चाहिए, ये भी नहीं ये किया, प्रोटेस्ट भी नहीं किया। दोनों कैलेंडर लेके चल रहे, सबूत नहीं मांगा, न 24 घंटे कहां से आए उसका सबूत है, न 365 सही है, 354 सही है उसका कोई सबूत है, और 5000 का सबूत मांगते हैं। अरे इसको स्वीकार कर सकते हैं तो 5000 को क्यों नहीं? वैसे 5000 का सबूत है हमारे पास। क्या सबूत है? हिंदू कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए, हाँ, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से अगर देखा जाए तो महाभारत युद्ध को हुए कितने साल हुए? 5000 साल हुए। और उसी महाभारत के अंतिम पर्व में ये बात आती है कि जब घर घर के अंदर महाभारत हो जाए तब समझना महाभारत काल पुनः आ गया। तो आज घर घर में क्या चलता है? चलता है, चलता है। तो हो गया ना 5000 साल। इस्लाम धर्म शास्त्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनके पवित्र धर्म पुस्तक में भी ये बात लिखी होती है कि कयामत का समय 5000 साल में एक बार आता है। और उनके पवित्र धर्म पुस्तक के हिसाब से कयामत का समय आ रहा है तो हो गया 5000 साल। क्रिश्चियन धर्म शास्त्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो उसमें भी ये बात आती है कि 3000 years before Christ there was heaven on earth और 2000 के बाद कहा जाता है नॉस्ट्रोडेमस की भविष्यवाणियों के हिसाब से द गोल्डन ईरा इज टू कम। तो हो गया 5000 साल। मायन कैलेंडर के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो भी कहते हैं कि हमारा साइकिल, हमारा कैलेंडर है ही 5000 साल का। 2012 में हर टीवी के ऊपर बहुत चला था कि मायन कैलेंडर के हिसाब से अभी महाविनाश प्रलय आने वाला है ना? उसी साल 2012 में मैं मेक्सिको गई थी और जब वहां गई तो मुझे पता नहीं था लेकिन मायन खंडर वही है। और जब हम उसी शहर में गए तो हमें कहा कि आपको ले चलते हैं मायन खंडर देखने के लिए। और यहाँ इतना टीवी पर उस समय एड चल रही थी, न्यूज में चल रहा था, तो हमने कहा अच्छी बात है, चलो देख लेते हैं कि क्या होता है मायन संस्कृति, मायन कैलेंडर क्या होता है। तो हमारा जो गाइड था वो मायन वंशज था, तो जब वो सारा बता रहा था मायन कैलेंडर क्या है मायन, तो मैंने उसको एक बात पूछी। मैंने कहा एक बात बताओ कि आपके कैलेंडर के हिसाब से 2012 में ये दुनिया खत्म हो रही है? उन्होंने तो डेट भी दे दिया था, कोई 21 दिसंबर 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी। तो मैंने उसको पूछा कि भाई 21 दिसंबर को ये दुनिया खत्म हो जाएगी? तो उसने कहा हमने तो ऐसा नहीं कहा है। मैंने कहा हमारे इंडिया में तो बहुत टीवी पर चलता है कि 21 दिसंबर 2012 को दुनिया खत्म हो जाएगी, ये मायन कैलेंडर कहता है। तो उसने कहा हमने ऐसा नहीं कहा है, हमने ये कहा है कि हमारा कैलेंडर 5000 इयर्स का है और 21 दिसंबर 2012 को हमारे 5000 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, हमारा एक कैलेंडर कंप्लीट होता है और 22 दिसंबर से नया कैलेंडर शुरू होगा नेक्स्ट 5000 इयर्स का। लेकिन हाँ, उसके पहले धीरे धीरे संसार के अंदर परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। तो मैंने कहा फिर ये जो इतना टीवी पर दिखाया जाता है वो क्या है? तो कहा ये एक फिल्म बनाने वाले आए थे, उन्होंने फिल्म बनाई और उन्होंने फिल्म बना करके अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए, और वो समझते हैं कि इंडिया सबसे अच्छा मार्केट है प्रमोट करने के लिए। उसने मुझे कहा कि इंडिया सबसे अच्छा मार्केट है इसको प्रमोट करने के लिए, दुनिया जानती है कि इंडिया में क्या प्रमोट किया जा सकता है। तो कहने का भावार्थ के हर धर्म 5000 साल की बात करता है, लाखों साल का एक एक युग है ये कोई नहीं कहता है। सपोज कर लेते हैं हम 5000 साल, जैसे वो एलजिब्रा में थियरम सॉल्व करना होता है ना, सपोज एक्स, सपोज करके देखते हैं 5000 साल। लेकिन तब फिर प्रश्न आता है, कई लोग पूछते हैं हमें, फिर बहन जी ये आर्कियोलॉजी वाले जो कहते हैं कि ये पत्थर करोड़ों साल पुराना है, वो सही है कि गलत है? वो भी सही है। क्यों, कैसे सही है? तो जिस तरह से दिन और रात का एक चक्र 24 घंटे का है, लेकिन ऐसे दिन और रात का चक्र कितनी बार घूम चुका है? 2017 साल से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले भी दिन और रात के चक्र चलते थे कि नहीं चलते थे? चलते ही थे। हमने कैलकुलेट नहीं किया तो क्या हुआ, चक्र तो चलता ही था। इसी तरह एक काल चक्र 5000 साल का है, लेकिन ऐसे 5000 साल का काल चक्र कितनी बार इस पृथ्वी के ऊपर घूम चुका? तो पृथ्वी तो करोड़ों साल पुरानी है ही ना, तो पत्थर निकला तो कौन सी बड़ी बात है, वो तो मिलेगा करोड़ों साल पुराना, क्योंकि 5000 साल का काल चक्र अनेक बार इस पृथ्वी के ऊपर घूम चुका है। ठीक है, तो इसीलिए पत्थर निकलना कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये 5000 साल का चक्र कैसे है, कैसे चलता है, इसको हिंदू धर्म के अंदर एक स्वास्तिका के रूप में दिखाया है। स्वास्तिका हर शुभ कार्य के लिए लगाया जाता है, लेकिन अगर किसी से भी पूछा जाए कि स्वास्तिका का अर्थ क्या है, तो क्या कहेंगे, शुभ की निशानी है, या कहेंगे हमारे पूर्वज करते हैं इसलिए हमें करना है, इसलिए हर शुभ कार्य के समय स्वास्तिका निकाल देते हैं। अरे यही शुभ की निशानी क्यों है, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। और खास करके जब भी कोई शुभ कार्य चलना होता है तो क्या करते हैं, स्वास्तिका निकालेंगे, फिर उसके ऊपर एक कलश रखेंगे, फिर कलश के ऊपर नारियल रखेंगे, हाँ, नारियल के ऊपर भी स्वास्तिका निकालेंगे। आप अगर किसी भी पंडित से एक बार पूछ लो कि ये क्यों किया जाता है कि पहले स्वास्तिका निकाला, फिर उसके ऊपर ये कलश रखा, फिर उसके ऊपर ये स्वास्तिका नारियल रखा, ये क्यों, तो क्या कहते हैं, हाँ, कहेंगे आपको नहीं समझेगा, हमको अपना काम करने दो। क्योंकि शायद वही नहीं जानते हैं, इसलिए यही कहेंगे कि आपको नहीं समझेगा, हमें अपना काम करने दो। हाँ, आज हम आपको उसका मीनिंग बताते हैं, ठीक है, ताकि कोई भी पंडित का पूछ करके फिर उसको मीनिंग बताना है ना, तो उसका मीनिंग क्या है कि स्वास्तिका शब्द संस्कृत के सुअस्ति शब्द से निकला। सुअस्ति, सु यानी शुभ, अस्ति यानी जो है, जो सदा ही शुभ है, यानी ये काल चक्र की हर घड़ी सदा शुभ है, कोई घड़ी बुरी है ही नहीं। इसीलिए गीता के सार में ये बात लिखी है कि हे अर्जुन, जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, जो होने वाला है वो भी बहुत अच्छा, तुम निश्चिंत रहो, नथिंग इज बैड। इस संसार के अंदर, काल चक्र के अंदर कोई भी घड़ी बुरी है ही नहीं, है ना, ये कहना चाहते हैं भगवान। तो इसीलिए कोई भी शुभ कार्य के लिए सबसे पहला स्वास्तिक निकाला जाता है कि ये घड़ी भी शुभ है, डोंट डाउट, कि इसके लिए डाउट्स नहीं रखो, पता नहीं ये घड़ी अच्छी है या नहीं है, नहीं, डू नॉट हैव एनी डाउट्स, ये घड़ी भी शुभ है, सुअस्ति, है ना, इसलिए सबसे पहला स्वास्तिक निकाला, ये घड़ी भी शुभ है। जिस घड़ी में ये कार्य हो रहा है ये घड़ी भी शुभ है। और कलश रखा, कलश माना इसका शेप कैसा है, इसका शेप कलश जैसा है ना, यानी ज्ञान युक्त बुद्धि से ये बात समझनी है कि ये घड़ी भी शुभ है। बुद्धि यहाँ है ना, तो ज्ञान युक्त बुद्धि से इस बात को स्वीकार करो, ज्ञान युक्त आधार से इसको स्वीकार करो कि ये घड़ी भी शुभ है। और फिर उसके ऊपर नारियल रखा। नारियल को क्या कहते हैं, श्रीफल। कि ज्ञान युक्त बुद्धि से जब ये बात को समझेंगे कि ये घड़ी भी शुभ है और शुभ कर्म करेंगे तो उसका फल कैसे होगा, श्रीफल, अच्छा ही होगा, श्रेष्ठ फल ही होगा। इसलिए श्रीफल ऊपर डाला है ना, कि ये घड़ी भी शुभ है और इसीलिए शुभ सोचते हुए, ज्ञान युक्त बुद्धि से शुभ सोचते हुए शुभ कर्म करो तो उसका फल हमेशा शुभ ही होगा, समझा। इसलिए कोई भी पंडित से पूछ करके देखना, और वो नहीं समझा सके तो उसको कहो मैं समझाता हूँ तुमको कि ये क्यों किया जाता है, ठीक है ना। बड़ा मजा आएगा आपको। ये भगवान ने हमें समझाया कि ये स्वास्तिका का मतलब ही है, जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, जो होने वाला है वो भी बहुत अच्छा, डोंट डाउट। लेकिन तब लोग क्या कहते, अरे नहीं नहीं बहन जी, कोई कोई घड़ी बहुत बुरी होती है, उसको अच्छा कैसे समझे हम। मुझे याद आता है कि एक बार एक भाई थे, उसका कार एक्सीडेंट हुआ, दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए, हॉस्पिटल में थे। हमें जब पता चला तो हमने सोचा चलो मिल के आते हैं। तो जब मिलने गए तो क्या कहेंगे, सहानुभूति के ही कुछ शब्द कहेंगे। तो हमने उस भाई से कहा भगवान को याद करो सब ठीक हो जाएगा। उस भाई को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा है, भगवान का नाम नहीं लो मेरे सामने, भगवान बहुत बुरा है, सबका बुरा करता है, बड़ा गुस्सा करने लगा। अरे भाई ये कार एक्सीडेंट हुआ है, थोड़े दिनों में ये फ्रैक्चर ठीक हो जाएगा, भले मल्टीपल फ्रैक्चर हुए हैं ठीक हो जाएंगे, जीवन तो बच गया। तो फिर भगवान को इतना गाली क्यों दे रहे हैं, बार बार एक ही बात कर रहा था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, है ना। मैंने किसी का बुरा नहीं किया इस जीवन में, मैंने किसी का बुरा नहीं, फिर भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे ये फल क्यों मिला, जब मैंने अच्छा ही कर्म किया, शुभ कर्म किया, फिर मुझे ये फल क्यों दिया भगवान ने। अब उसका जवाब तो हमारे पास नहीं था उस वक्त, किसी ने हमारे सामने सामने उसको कह दिया कि अरे भाई भगवान को क्यों गाली दे रहे हो, हरेक का कर्म का हिसाब किताब भी तो अपना होता है ना। हमें महसूस होने लगा ये भाई का गुस्सा बढ़ता जाएगा हमें देख देख करके, है ना, इसलिए बेटर है कि बाहर निकल जाए। तो हम बाहर निकल गए धीरे धीरे सरकते हुए, उसकी वाइफ ने हमें देखा तो उसकी वाइफ ने आकर के हाथ जोड़कर कहने लगी कि बहन जी अगर कुछ उल्टा सीधा कह दिया हो तो आप क्षमा कर देना। इस वक्त इनकी मानसिक स्थिति को समझने का प्रयत्न करना। मैंने कहा इतना अच्छा भाई नास्तिक नहीं है, आस्तिक है, और वो आज ऐसी बातें कह रहा, इसलिए थोड़ा आश्चर्य लग रहा था। तब उसने बताया कि ऐसी बात नहीं है। फिर क्या बात है, तब उसने बताया वो कोई लायंस का या रोटरी का प्रेसिडेंट था, और अब उसका टेन्योर पूरा हो रहा है, तो जब टेन्योर पूरा होता है तो कोई इंटरनेशनल गैदरिंग होती है, उसको उस गैदरिंग में जाना था और 10 दिन पहले उसको ये कार एक्सीडेंट हो गया। अब 10 दिन में तो ठीक होकर के जा नहीं सकता है, और वहां क्योंकि उसने बहुत अच्छा कोई काम किया था इसलिए उसको अवार्ड मिलना था। अब जा नहीं सकता है तो बार बार उसके सामने वो आता था, अरे इतने बड़े बड़े लोग वहां आएंगे, उन सब के बीच में मैं जाता था, मेरा फोटो निकलता था, मुझे अवार्ड मिलता था, मेरा सम्मान होता था, वहां से मैं जब वापस आता था तो यहां मुझे कैसे रिसीव किया, अब कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए ये बात उससे हजम नहीं हो रही थी कि मैंने अच्छा कर्म किया, फल लेने का समय आया तो भगवान ने मेरे हाथ से फल क्यों छीन लिया, इसमें क्या अच्छा था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। अब उसका तो जवाब नहीं था। जब किसी ने उसको कह दिया कि अरे हरेक का कर्म का हिसाब किताब भी तो अपना अपना होता है ना, उसको और गुस्सा आ गया कि कर्म का हिसाब किताब मैं कहां मना कर रहा हूं, लेकिन वहां से आने के बाद भगवान हिसाब किताब नहीं ले सकता था, पहले ही लेना था, है ना? वहां से आने के बाद हिसाब किताब लेते थे ना, पहले क्यों ले रहा है? अब क्या करें, हम तो निकल गए वहां से। 8-10 दिन के बाद गुरुवार का दिन था, सोचा चलो गुरुवार का प्रसाद भाई के लिए ले जाते, हो सकता है कि अभी मानसिक स्थिति थोड़ी ठीक हुई हो। तो हम जब गए डरते डरते, लेकिन जैसे ही हमें देखा, सुबह में और कोई नहीं था, वो और उसकी वाइफ दोनों ही थे, तो जैसे ही हमें देखा तो कहने लगे आओ बहन जी आओ, देखो भगवान जो करता है ना अच्छा ही करता है। क्या हो गया? तो उसने न्यूज़पेपर उठाकर दिखाया, जिस फ्लाइट में वो जाने वाला था वो फ्लाइट क्रैश हो गया। उसके बाद इतनी अच्छी बातें करने लगा और कहने लगा, देखो बहन जी मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया ना, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। घात तो आई लेकिन भगवान ने मुझे बचा लिया, क्योंकि मैंने अच्छा कर्म किया था ना, इसीलिए। नहीं तो आज मैं उसी फ्लाइट में होता था, अवार्ड तो मिलना ही नहीं था लेकिन जीवन भी चला जाता था। भगवान कितना दयालु है, कृपालु है, छोटा सा एक्सीडेंट करके मुझे रोक लिया। अब छोटा हो गया एक्सीडेंट, उस दिन कितना बड़ा लग रहा था उसको, अब छोटा हो गया, छोटा सा एक्सीडेंट करके मुझे रोक लिया। फिर कहने लगा, बहन जी आज मुझे ऐसा लगता है भगवान ने मुझे सबसे बड़ा अवार्ड दिया, एक नया जीवन दान दे दिया, इससे बड़ा अवार्ड और क्या हो सकता है मेरे लिए। हो सकता था वो अवार्ड लेके आता था, मुझे घमंड आ जाता था। भगवान नहीं चाहते थे कि मैं घमंड में आऊं, इसीलिए उसने मुझे रोक लिया, जीवन दान दे दिया, इससे बड़ा अवार्ड और क्या हो सकता। इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा था तो उसकी वाइफ मुझे कहने लगी, बहन जी यही ज्ञान अगर 10 दिन पहले आ जाता था तो कितना अच्छा होता था। भगवान को तो कितनी गाली दिया होगा मालूम नहीं, लेकिन जो आता था भगवान का नाम लेता था बस उसके ऊपर भी गुस्सा हो जाना, कितने लोगों के साथ संबंध खराब होने जैसी स्थिति हो जाती थी, क्योंकि हरेक के अंदर तो सहन शक्ति नहीं होती है। मुझे एक एक को बाहर ले जाकर के हाथ जोड़ के माफी मांगनी पड़ती थी कि आप उसकी बात का बुरा नहीं मानना, प्लीज माफ कर देना। क्या मैंने अपने कर्मों के लिए इतनी माफी किसी से नहीं मांगी जितना इसके कर्मों के लिए मांगनी पड़ी। मेरे जीवन के सबसे बुरे दिन ये 10 दिन गए, तो ये ज्ञान पहले क्यों नहीं आता है? मैंने कहा, बहन जी भगवान का शुक्र करो और समय का शुक्र करो कि समय ने 10 दिन में पर्दा खोल दिया कि क्या अच्छा था। जीवन में कोई कोई घटनाएं ऐसी आती है जिसका पर्दा समय एक साल के बाद खुलता है, वो साल कैसा जाता है, कितना चिड़चिड़ापन आता है। एक साल के बाद हम यही सेंटेंस बोलेंगे, अच्छा हुआ था। साल के बाद कहते हैं ना, तो पहले ही कहो ना। इसीलिए भगवान ने गीता के सार में ये बात कह दिया, जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो अच्छा, जो होने वाला है वो बहुत अच्छा। तो जब कोई घटना आती है उस समय ये समझो, अंदर में गीता के सार को याद करो, जो हुआ वो अच्छा। तो गुस्सा आएगा, संबंध खराब होगा, टेंशन होगा, बार बार ये सवाल होगा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा, ये आएगा। फ्रस्ट्रेशन आएगा, नहीं आएगा। जो हुआ वो अच्छा, ये काल चक्र हमें कहता है, जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो अच्छा, जो होने वाला है वो बहुत अच्छा। निश्चिंत रहो, बुरा कुछ है ही नहीं, ये घड़ी भी अच्छे से अच्छी है। और जब ऐसे पॉजिटिव सोचना शुरू करेंगे तो शायद क्या होगा, नहीं तो नेगेटिव सोच सोच करके कितना व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार होता है। इसलिए भगवान कहते हैं पॉजिटिव सोचो। और जब ये पॉजिटिव, ये सबसे बड़ा पॉजिटिव एफर्मेशन है, और ये पॉजिटिव एफर्मेशन जिसने अपने जीवन के अंदर धारण कर लिया, उसके दिन बदल जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन खत्म हो जाता है, स्ट्रेस खत्म हो जाता है, डिप्रेशन खत्म हो जाता है, और जीवन के दिन ही बदलने लगते हैं। होता है कि नहीं होता है ना? इसलिए जो हुआ वो अच्छा। ठीक है, तो आज के बाद तो टेंशन में नहीं आएंगे ना? क्या गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन आएगा, आएगा नहीं आएगा? अब ये काल चक्र कैसे चलता है, चार भाग में है, इसलिए स्वास्तिका का निशान हर धर्म में दिखाया जाता है। हर धर्म में स्वास्तिका का निशान मिलेगा, चार भाग बराबर। क्रिश्चियन धर्म में भी इसलिए क्रॉस चार भाग होता है, उसमें इस्लाम धर्म में भी स्वास्तिका का कहा जाता है कि हिटलर सबसे बड़ा स्वास्तिका को मानता था, और हर जगह उसने स्वास्तिका का निशान बना दिया था, अपने फ्लैग पर भी स्वास्तिका का निशान बना दिया था, इतना वो स्वास्तिका को मानता था। ये स्वास्तिका क्या कहते हैं, ये चारों भाग एक तरीके है, यानी 5000 साल का चक्र है, तो हर भाग कितने साल का हो सकता है, 1250 साल का। ये चक्र कब शुरू हुआ ये मालूम नहीं, लेकिन उसके जो हाथ दिखाए हैं, पोजीशन जो हाथ की है, उसमें सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये पोजीशन राइट हैंड साइड ऊपर की ओर, ये पोजीशन माना देना, आशीर्वाद, ब्लेसिंग, शुभ होता है ना, आशीर्वाद देना, कोई भी काम राइट हैंड से ही किया जाता, शुभ कार्य, और वो भी अगर ये पोजीशन में हो, यानी देने का काम कर। तो ये चक्र कब शुरू हुआ ये तो मालूम नहीं, लेकिन जैसे दिन और रात का चक्र कब शुरू हुआ मालूम नहीं, लेकिन उसका पहला पहर सुबह को माना जाता है। इसी तरह ये काल चक्र कब शुरू हुआ ये मालूम नहीं, लेकिन उसका भी पहला पहर सतयुग को माना जाता है, सत्यता का युग, जहाँ संपूर्ण सत्यता है, सात्विकता है, सत्वप्रधानता है, जहाँ हर इंसान देने की भावना रखता है, लेने की भावना नहीं रखता है। आज देखो कलयुग के अंदर हर चीज दे रही है मनुष्य के सिवाय। आप जो सोफा पर बैठे हैं, ये सोफा क्या दे रहा है आपको, सुख दे रहा है ना, ये माइक क्या दे रहा है, ये पंखा क्या दे रहा है, ये लाइट क्या दे रहा है, सूर्य क्या दे रहा है, हर चीज देने का काम करता है, एक मनुष्य ही लेने का काम कर रहा है। लेकिन जिस दिन मनुष्य भी देने का काम करे तो सतयुग आ जाएगा, है ना? जिस दिन मनुष्य देने का कार्य करना शुरू करेगा उस दिन सतयुग आ जाएगा। इसीलिए आज से भगवान क्या कहता है, दो चीज देने की बात नहीं है, अच्छी भावनाएं दो, किसी को दुआएं दो, किसी के लिए शुभ भावना दो, अच्छी बातें तो दो, किसी को अच्छे विचार दो, समय दो, दो ना, देने का काम करो। जब देने का काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीवन क्या बन जाएगा, सतयुग, सतयुग बन, अपना जीवन तो बदल जाएगा, अपना जीवन तो ये हो जाएगा, और एक एक का जीवन ऐसे बदल जाएगा तो समय, समय भी बदल जाएगा। जब तक इंसान लेने का, लेने की भावना रखता है, लेने का काम कर रहा है, तब तक दुख है, क्योंकि जब नहीं मिला तो क्या होगा, दुख मिलेगा। इसीलिए लेने की भावना के बजाय देने की, हाथ ऐसा रखो, जब हाथ ऐसा रखते हैं ना तो सुख मिलता है, हाथ ऐसा होगा तो नीचे हो गया ना हाथ, तो नीचे हाथ नहीं होना चाहिए, देने का काम करो, ये हाथ दो, है ना, ये हाथ जब होगा ना देखो कितना सुख। इसीलिए भगवान ने हमें यही सिखाया, दो, दो, बाबा का ये स्लोगन था, बच्चे मांगने से मरना भला, देना का काम करो, तुम जितना देते जाएंगे, देते जाएंगे, देते जाएंगे, उतना तुम्हें भी सुख मिलेगा, दाता के बच्चे हो तुम, देने का काम करो, ज्ञान दो, अच्छी भावना दो, हाँ, दुआएं दो, शक्ति दो, सब दो आप, है ना, अपने आप जितना देते जाएंगे उतना अपने आप आता जाएगा। मांगने की भावना या अपेक्षा नहीं रखो, किसी ने नहीं दिया उसको भी दुआ दो, है ना। तो इसीलिए भगवान का घर या भगवान का ज्ञान हमें यही सिखाता है, देने का काम करो, सत्यता का युग तभी आ जाएगा। सत्यता माना अविनाशी, सत्य एक होता है और सत्य को कोई मिटा नहीं सकता है, तो सत्यता का युग था, है ना, और वो सत्यता का युग जहां हर चीज अगर सतो प्रधान हो तो वो दुनिया कैसी होगी, सोचने की बात है। कि जहां पर गायन है कि शेर और गाय घाट पर पानी पीते थे, तो उस दुनिया के मनुष्य कैसे होंगे, अहिंसक वृत्ति वाले, अहिंसक वृत्ति वाले। तो आत्माएं भी इतनी श्रेष्ठ सतो प्रदान अहिंसक वृत्ति वाले थी। उस दुनिया के लिए कहा जाता है सत्यता का युग या सूर्य वंश, कि जैसे सूर्य की कला कभी कम जास्ती नहीं होती, ऐसे आत्माओं की कला भी कम जास्ती नहीं होती है। वो दुनिया के लिए बाइबल के अंदर बहुत सुंदर लाइन आती है जेनेसिस चैप्टर 1 में, और वहां लिखा है कि भगवान ने जब ये पहला पहर बनाया था, सतयुग बनाया था, तो कैसा था वो, तो कहा गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, भगवान ने मनुष्य को अपनी कृति में बनाया था, अपने स्वरूप में बनाया था। इसीलिए उनको भी कहा जाता है भगवान भगवतियां, गॉड्स एंड गॉडेसेस। और ये बात खाली बाइबल में नहीं कही है, सभी धर्म में। गुरु नानक देव ने कहा मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार, परमात्मा को मनुष्य से देवता बनाने में देर नहीं लगती है। गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, ये जो बाइबल में कहा है, गॉड मेड मैन, क्योंकि सतयुग से पहले कलयुग था, कलयुग के अंदर मैन नर था, मनुष्य था, माने ये साइकिल है। तो गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, यानी कलयुग के जो मनुष्य थे उनको भगवान ने अपने स्वरूप में बनाया, मना कलयुग और सतयुग। गुरु नानक देव ने कहा, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। कलयुग के अंदर मनुष्य है, उनको देव, सतयुग के देव बनाने में भगवान को देर नहीं लगती, तो वो भी साइकिल दिखा है। हिंदू धर्म शास्त्र में कहा गया है कि नर ऐसी करनी करे जो नर नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बने। कैसे बने मनुष्य से देव, कैसे बनाया भगवान ने मनुष्य को अपने इमेज में, तो ऐसे कर्म करके। तो हिंदू धर्म में इतना क्लियर कर दिया कि नर ऐसी करनी करे जो नर नारायण बने। तो कलयुग के अंदर नर है, सतयुग में नारायण है, लेकिन कैसे बने, करनी से, ऐसे कर्म करने से। कौन सा कर्म किया, देने का काम किया, बस देते जाओ, अच्छी चीजें हमेशा देते जाओ, अच्छी भावनाएं हमेशा देते जाओ, अच्छे वाइब्रेशन देते जाओ, ये करनी है। जब ये करनी करना शुरू करेंगे तो क्या होगा, सतयुग आ जाएगा, बदल जाएंगी दुनिया, बदल जाएगी। तो इसीलिए धर्म हमेशा यही सिखाया, देने का काम है ना। इसीलिए सतयुग कैसी दुनिया थी, उस दुनिया के अंदर देखा जाए तो जहाँ पशु पक्षी एक घाट पर अगर पानी पीते हो तो वो दुनिया कितनी सुंदर, सुख शांति पवित्रता संपन्न दुनिया है। ऐसी शांति वहां पर है, ऐसी समृद्धि वहां पर है, जहाँ पवित्र आत्माएं इस संसार में आती है, ऊपर परमधाम से इस संसार में उतरती है और कोई न कोई देव और देवी का चोला धारण करती है और इस तरह से पूरी दैवी दुनिया बन जाती है। और वो दुनिया में राज्य करने वाले कौन थे, श्री लक्ष्मी और श्री नारायण। कैसे पता चला, कैसे पता चला कि श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य था, तो नारायण के साथ हमेशा एक प्रीफिक्स लगता है, सूर्य नारायण या सत्य नारायण। सत्य नारायण कहते ना, कथा सुनते ना सत्य नारायण के, तो सूर्य नारायण या सत्य नारायण। क्यों, क्योंकि जो सतयुग के राज्य करता थे, जो सूर्यवंशी थे, तो सूर्य नारायण, तो वहां के राज्यकर्ता कौन हुए, श्री लक्ष्मी और श्री नारायण। इसलिए कहा, नर ऐसी करनी करे जो नर नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बने। क्लियर हुआ है ना। धीरे धीरे समय बीतता गया, सृष्टि नाटक का दूसरा भाग आया जिसको कहा त्रेता। त्रेता माना थोड़ी त्रुटि आ गई, थोड़ी डिफेक्ट आ गई, स्वास्तिका का हाथ नीचे गिरा, जो सतयुग के देवी देवताएं थे धीरे धीरे सीढ़ी नीचे उतरने लगे। पवित्रता सुख शांति समृद्धि इस दुनिया में भी है, लेकिन सतयुग जितनी संपन्नता नहीं है, दो कला कम हो गई, इसीलिए उसको कहा जाता है चंद्रवंश। वो सूर्यवंश था, ये चंद्रवंश था। और इस दुनिया में राज्य करने वाले कौन थे, श्री राम और सीता। कैसे पता चला, तो श्री राम के साथ शब्द जुड़ता है श्री राम चंद्र। सूर्य नारायण कहा, रामचंद्र कहा, यानी चंद्रमा की तरह दो कला कम हो गई, तो चंद्रवंश के महाराजा महारानी है। इसीलिए दिखाते श्री राम के पूर्वज सूर्यवंशी थे, सूर्य का तिलक लगाते थे, परंतु जहाँ से श्री राम आए वहां से दूसरा युग आरंभ हो गया, जिसको कहा जाता है चंद्रवंश। चंद्रवंश तब कई बार कई लोगों को सवाल उठता है, देवताओं ने ऐसा कौन सा कर्म किया जो दो कला कम हो गई। कर्म करने की बात नहीं है, सृष्टि एक नियम में चलती है ना। जिसको साइंस के अंदर कहा जाता है थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड प्रिंसिपल कहते हैं लॉ ऑफ एंट्रोपी। और लॉ ऑफ एंट्रोपी को डिफाइन किया गया है कि एवरीथिंग मूव्स फ्रॉम एन ऑर्गेनाइज टू अ डिसऑर्गेनाइज स्टेज। हर चीज नई से पुरानी होती है, पुरानी से नई नहीं होती है, नई से पुरानी नेचुरल होती है ना। मकान नया होगा, पुराना खंडर अपने आप हो जाएगा। खंडर बनाया नहीं जाता है, खंडर से नया अपने आप नहीं होता है, बनाना पड़ता है, तोड़ करके पुराना बनाना पड़ता है ना। कोई भी चीज ऊपर से नीचे अपने आप गिरती है, नीचे से ऊपर चढ़ाना पड़ता है। पानी को भी नीचे से ऊपर चढ़ाना पड़ता है मोटर के द्वारा, ऊपर से नीचे अपने आप। कोई भी चीज सदा स्थायी एक ही स्थिति में नहीं रहती है। संपूर्ण खिला हुआ पूर्णमासी का चांद कितना दिन होता है पूर्णमासी में? एक घड़ी। दूसरी घड़ी से फिर उसकी अमावस्या की ओर यात्रा शुरू हो जाती है। और अमावस्या में कितनी देर रहता है? एक घड़ी। एवरी मोमेंट इज चेंजिंग, हर घड़ी परिवर्तनशील। समय रुकता नहीं है और परिवर्तन नित्य प्रक्रिया है। इसीलिए कहा परिवर्तन होता आया है, होता रहेगा। कोई घड़ी के लिए ये नहीं कहता स्टैंड स्टिल हो गई और फिर यहां से नया शुरू होगा, नहीं। इट्स अ कांस्टेंट प्रोसेस, चेंज इज अ कांस्टेंट प्रोसेस, नित्य प्रक्रिया है। और इस तरह से धीरे धीरे समय तीसरे भाग में आता है जिसको कहा जाता है द्वापर। सत्यता माना एकता, द्वापर माना दो पुर जहां से शुरू हुए। स्वास्तिका का हाथ लेफ्ट हैंड साइड पर टर्न हो गया और ये पोजीशन में आ गया, मांगने की पोजीशन में आ गया। सत्युग में ये पोजीशन में था, द्वापर में ये पोजीशन में आ गया। तो सत्यता एकता समाप्त हुई, द्वापुर दो पुर आरंभ हुए। दो पुर कौन से? सत्य के साथ असत्य मिक्स होने लगा और असत्यता के कारण दुख अशांति आरंभ होती है। और दुख अशांति के कारण मनुष्य जब दुखी होता है तो किसको याद करता है? भगवान को। मांगता है तो क्या मांगता है? सुख शांति मांग। इसीलिए कहा जाता है दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। अगर सुख में करे तो दुख काहे को आए? संसार में दुख क्यों आया? क्योंकि सत्ययुग और त्रेता युग जो सुख का समय था, तब भगवान को किसी ने याद ही नहीं किया। लक्ष्मी नारायण ने कभी भगवान को याद ही नहीं किया, इसीलिए दुख आया। अगर सुख में याद करते थे तो दुख क्यों आता था? So this is part of the cycle. दुख आना ही है, क्योंकि सतयुग और त्रेता युग में भगवान को किसी ने याद ही नहीं किया। अब जब याद कर रहे हैं तो किसको भगवान कहे? भगवान का परिचय ही नहीं है तो किसको भगवान माने? तो जो देवी देवताएं सतयुग और त्रेता युग में होकर के गए उसको ही भगवान मान लिया और उसकी पूजा आरंभ कर दी। जैसे आज की दुनिया में कई संतों का मंदिर है ना, साईं बाबा का मंदिर है, कई लोगों का मंदिर है। अगर आप कहो कि भाई साईं बाबा तो हमारे जैसे इंसान ही था ना, थोड़े साल पहले था, फिर उसका मंदिर क्यों बनाया? तो लोग क्या कहेंगे? भाई उसकी पूजा क्यों कर रहे हैं? तो क्या कहेंगे? हमसे तो अच्छे थे ना, हमसे अच्छे थे इसलिए पूजनीय है। पूजनीय माना उसकी पूजा के योग्य है, इसीलिए उसके मंदिर बनाकर पूजा करते हैं। तो जो द्वापर में हो गए उससे पूजनीय कौन थे? सतयुग और त्रेता के देवी देवताएं, वो पूजनीय थे इसलिए उनके मंदिर बना दिए, क्योंकि भगवान का तो परिचय ही नहीं था किसको, तो इसीलिए उनके मंदिर बना करके उनकी पूजा शुरू कर दी, क्योंकि उनके लिए वही पूजनीय था। जैसे आज की दुनिया के लिए वो पूजनीय है तो उनके लिए वो पूजनीय थे, राइट, है ना। तो इसी तरह उनको भगवान मान करके उनकी पूजा करना आरंभ किया, उनसे ही मांगना शुरू किया, हमें शांति दो, सुख दो, ये दो, वो दो, भाई जो आपके पास था वो हमें दो, है ना। और इसीलिए उन देवी देवताओं के मंदिर बना करके उनकी पूजा शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि मनुष्य आत्माएं उस श्रेष्ठ स्थिति से नीचे आ गए, सोल कॉन्शियसनेस से बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए, और जब बॉडी कॉन्शियसनेस आ गया, धीरे धीरे ईगो कॉन्शियसनेस आ गया कलयुग के अंदर, तो उसी समय में मंदिर बनाए, शास्त्र बनाए, पूजा के विधि विधान बनाए, और इस तरह से भक्ति मार्ग आरंभ होता है, भक्ति शुरू हो गई। धीरे धीरे समय और बीतता गया, और जब इतना भक्ति मार्ग शुरू हुआ, भी वो देवी देवताएं तो दे नहीं सकते हैं, वो तो कितना देंगे भाई, जितना हमारे पास होगा उतना ही देंगे ना, तो वो तो थोड़ा बहुत ही दे सकते। तो धीरे धीरे समय और ये आता गया, और इस तरह से भगवान को अनजानेपन में याद किया, उनको ही भगवान समझ के याद किया, तो भगवान को भी दया आती है कि भाई चलो मेरा परिचय ही नहीं है, लेकिन याद तो मुझे ही कर रहे हैं, मेरे बच्चे हैं, लेकिन मेरा आने का वक्त नहीं है। इसलिए उस समय में संसार में कुछ महान आत्माएं आती है जो अपने अपने धर्म की स्थापना करती है। तो सबसे पहले इब्राहिम आते हैं जिसने इस्लाम धर्म की स्थापना की, उसके बाद महात्मा बुद्ध आते हैं जिसने बौद्ध धर्म की स्थापना की, और उसके बाद क्राइस्ट आते हैं जिसने क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की। ऐसे भारत से बाहर ये तीन महान धर्म पिताएं आते हैं जो अपने अपने धर्म की स्थापना करते हैं, और भारत में हर स्टेट में कोई ना कोई महान आत्माएं आ गई, हर स्टेट में, जिसकी लोगों ने पूजा शुरू कर दिया। भारत से बाहर ये तीन आए और उन्होंने बहुत अपने धर्म का फैलावा किया। किसी ने अपने आप को भगवान नहीं कहा, ये लोगों ने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा, उन्होंने हमेशा ये कहा हम ईश्वर के पैगंबर हैं, वी आर द मैसेंजर्स ऑफ गॉड, मैसेंजर कहा, और इसीलिए कहा मैसेज लेकर के आए। अब जिस एरिया में वो गए थे वहां की हालत जो थी उसको देखकर उन्होंने मैसेज दिया। जैसे मिडल ईस्ट में जब इब्राहिम गए तो वहां के समाज की हालत क्या थी, तो उस समाज में जीवन जीने के कोई सिद्धांत नहीं थे, भाई कितनी भी पत्नियां रखो, कितना भी ये करो, तो व्यभिचार होने लगा था। तो इसीलिए इब्राहिम ने जीवन जीने के सिद्धांत दिए, लॉज टू गवर्न ह्यूमन लाइफ। लेकिन अफसोस उस धर्म के लोगों ने उसको समझा ही नहीं, उनके किताबों में ही रह गया, उन्होंने उसका न आचरण किया, न उसको समझा और न उसको पालन किया, इसीलिए गिरने लगे और गिरती कला आ गई, कलयुग आया। इसीलिए इसी तरह महात्मा बुद्ध जहां गए थे वहां की समाज, फार ईस्ट की समाज की हालत क्या थी कि वो कुछ भी खाते थे। आज भी कोई चाइनीज कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट में चले जाओ, क्या खाते हैं वो लोग, वो कुछ भी खाते हैं, दया नाम की चीज नहीं है उनके अंदर। तब महात्मा बुद्ध ने प्रचार किया दया ही धर्म है, दया धर्म का मूल है। प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखो। लेकिन अफसोस उन लोगों ने भी समझा ही नहीं और न पालन किया। महात्मा बुद्ध को बहुत मानते हैं, महात्मा बुद्ध की नहीं मानते हैं, है ना? और इसीलिए उन्होंने भी समझा ही नहीं। आज भी कोई चाइनीज कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट में जाओ, क्या खाते हैं वो लोग? जो दुनिया में कोई नहीं खाता है ना, वो ये लोग खाते हैं, है ना? आप सोचेंगे बहन जी को कैसे पता? कुछ समय पहले मैं हांगकांग चाइना के तरफ गई थी, और जैसे बम्बई की चौपाटी बहुत मशहूर है, ऐसे हांगकांग की चौपाटी भी बहुत मशहूर थी एक समय में। चाइनीज लोग घर में खाना कभी नहीं बनाते, वो बाहर ही खाते हैं। उनके किचन खाली चाय पानी के लिए होते, ग्रीन टी के लिए होते हैं, इसलिए बहुत छोटे छोटे किचन होते हैं जहाँ खाली एक पानी गर्म करने की व्यवस्था होती है और ग्रीन टी बना सकते हैं, इतना ही होता है। बाकी ये तीनों टाइम बाहर खाते हैं। तो एक बार जैसे हमारा कार्यक्रम था, एक आइलैंड पर हमें जाना था, तो गाड़ी पार्क की और बोट लेनी थी, तो उस चौपाटी से गुजरना पड़ा। तो जब उस चौपाटी से हम गुजरे तो वहां का जो नजारा देखा मुझे कभी भूलता नहीं है। कहां देखा तो रंग बिरंगी सांप लटक रहे थे, है ना? और बड़ा तवा रख के उसको फ्राई करके बड़े चाव से वो खा रहे थे। कहां देखा तो वो बिच्छू की सब्जी पकाई जा रही थी, खा रहे हैं, बिच्छू खा रहे। कहां देखा तो कॉकरोच की चटनी पीसी जा रही थी। क्या क्या खाते हैं लोग? कहां देखा तो कुत्ते का गोश्त उबल रहा था। आप अगर जाएंगे, अभी भी मैं पिछले महीने चाइना होकर के आई, वहां के आसमान में आपको एक चिड़िया नजर नहीं आएगी। क्यों, क्या, कहां गई चिड़ियाएं? तो कहा जितने थे ये मार मार के खा गए। मैंने कहा तभी भारत में सारे पैदा हो गए। कुत्ते एक रास्ते में आपको दिखाई नहीं देगा, जितने कुत्ते देखे मार के खा गए ये लोग। मैंने कहा तभी पुनर्जन्म भारत में ले रहे हैं, इसलिए भारत में इतने कुत्ते भी बढ़ गए, है ना? पंछी भी बढ़ गए, सब बढ़ते जा रहे हैं। 20 साल पहले इतने कुत्ते थोड़ी थे जितने आज है रास्ते पर, यही जन्म ले रहे हैं सारे, है ना? तो क्या क्या खाते हैं, है ना? और अभी तो आप लोग ने सुना होगा, इंटरनेट पर देखा भी होगा कि प्राणी मात्र के प्रति तो दया भाव है ही नहीं, लेकिन मनुष्य के बच्चे 10 दिन के 15 दिन के बच्चों को होटल में बेचा जाता है $2,000 में, और वो बच्चे को भी बेक करने में, उसको खाने में हिचकिचाहट नहीं। मनुष्य कैसा हैवान बनता जा रहा है ये प्रैक्टिकल देखने को मिलता है। इसलिए कहा इतनी गिरावट आ गई क्योंकि उन मैसेंजर्स का भी उन्होंने माना नहीं, सुना ही नहीं, समझा ही नहीं उनके मैसेज को। इसी तरह जहां जीसस क्राइस्ट गए थे वहां के समाज की व्यवस्था कैसी थी, तो उस समाज के अंदर जीसस क्राइस्ट ने दो बातें देखी जिस पर उसने प्रचार किया। सबसे पहली बात देखी कि उन लोगों के अंदर न सत्यता है, झूठ इतना बढ़ता जा रहा है, और दूसरा देखा नफरत, मनुष्य को मनुष्य के लिए नफरत। तब उसने यही दो बातों का प्रचार किया, सत्य ईश्वर है, प्रेम ईश्वर है। लेकिन अफसोस उस समय के लोगों ने समझा ही नहीं। इसलिए प्रेम और सत्यता का संदेश देने वाले जीसस के साथ क्या किया, उसको ही क्रॉस पर लगा दिया। यानी दुनिया के सामने ये प्रत्यक्ष कर दिया कि हम अपने धर्म पिता को नहीं बख्शते तो बाकी किसको बख्शेंगे। इतना नफरत, इतना टॉर्चर करके उसको सूली पर चढ़ाया, प्रेम और सत्यता का संदेश दे रहा था, है ना? तो इसीलिए कहा कि जिस देश में भी ये वेस्टर्न दुनिया के लोग चले गए, गए थे व्यापार के लिए, लेकिन वहां जाने के बाद क्या किया, नफरत के बीज बोए, झूठ का सहारा लिया, और राजाओं को राजाओं से लड़ाया, राजाओं को प्रजाओं से लड़ाया, भारत में भी आकर क्या किया, और राज्य देने वक्त वापस क्या किया? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, डिवाइड एंड रूल। नफरत के बीज ऐसे बोए, दो टुकड़े कर दिए देश के, और क्या किया? नफरत के बीज ऐसे बोए के भाई भाई लड़ रहा है, किस लिए लड़ रहा है मालूम नहीं, कोई कारण ही नहीं है लड़ने का, लड़ रहा है। इसीलिए कहा कि उन लोगों ने ये संदेश को नहीं समझा, अफसोस। तो न इब्राहिम के संदेश को समझ पाए फारिस्ट वाले, सॉरी मिडल ईस्ट वाले, न फारिस्ट वाले महात्मा बुद्ध के संदेश को समझ सके, और न वेस्टर्न दुनिया के लोग क्राइस्ट के संदेश को समझते गए, और इस तरह से कलयुग आ गया। इसलिए दुनिया बहुत गिरती गई, इतनी गिरती गई कि चौथा युग आया जिसका हाथ ऊपर उठ गया, यानी क्लाइमेक्स, हर प्रकार की बुराई की क्लाइमेक्स की स्थिति आ गई। अति धर्म भ्रष्ट, अति कर्म भ्रष्ट, अति अत्याचार, अति पापाचार, अति दुराचार, हर प्रकार की अति हो गई। और जब ऐसी अति की स्थिति आती है उसको ही कहा जाता है रावण राज्य। रावण राज्य क्यों कहा? रावण कोई असुर नहीं था, ब्राह्मण था, ऊंची जाति का था, फिर भी राम को आना पड़ा उसको मारने के लिए, एक ब्राह्मण को मारने के लिए। क्यों? क्योंकि हर प्रकार की बुराई, अहंकार चरम सीमा पर था। नहीं तो आप सोचो, रावण जैसा विद्वान इस संसार के अंदर कोई नहीं मिलेगा, रावण जैसा धनवान कोई नहीं मिलेगा, सोने की लंका थी उसकी, रावण जैसा भक्त भी कोई नहीं मिलेगा, शिव का भक्त था वो। एक ही बात उसके अंदर आ गई, अहंकार चरम सीमा पर। तो रावण जैसी बुद्धि कोई के पास नहीं, रावण जैसा धन कोई के पास नहीं, रावण जैसी भक्ति किसी के पास नहीं, और रावण जैसा शक्तिशाली कोई नहीं। इतने दिव्य अस्त्र उसको प्राप्त थे भक्ति करके कि उसका मुकाबला राम भी नहीं कर सकता था। इसीलिए तो समुद्र से जब रास्ता मांगा श्री राम ने, तो समुद्र देवता प्रकट होकर के उसको कहता था कि हे राम, अगर तुम ऐसे ही चले जाओगे उसके साथ ही तो हार जाओगे, तुम विजयी नहीं हो सकते हो। कहा क्यों? तो कहा उसके पास दिव्य अस्त्र है, उसका प्रिपरेशन तुम करो, तुम्हारे पास दिव्य अस्त्र नहीं है। तो कहा कैसे प्राप्त होगा? श्री राम पूछता है समुद्र देवता से, तो कहा महादेव की भक्ति करो। इसलिए रामेश्वरम पहुंच करके सबसे पहले उसने महादेव की भक्ति किया, वो दिव्य अस्त्र प्राप्त किया, उसके बाद रावण के ऊपर विजय प्राप्त कर सके। अगर ऐसे ही चले जाते थे तो राम हार के आते थे, इतना शक्तिशाली रावण था। जितनी बार सर काटता था नया उग जाता था, जितनी बार सर काटता था नया आ जाता था, दिखाते ना ऐसा, इतना शक्तिशाली था। फिर विभीषण ने कहा कि तुम इधर मारो उसको, नाभि में मारो, तो मरेगा, ये तो मरने वाला नहीं है। तो रावण जैसा बुद्धिशाली, रावण जैसा शक्तिशाली, रावण जैसा धनवान और रावण जैसा भक्त कोई नहीं मिलेगा। लेकिन दो बातों की कमजोरी थी उसके जीवन में, जिस कारण से उसका सर्वनाश हुआ। और वो दो कमजोरी क्या थी? अहंकार चरम सीमा पर था, और दूसरा चरित्र भ्रष्टता। ये दो बातों के कारण उसका सर्वनाश हुआ। तो आज की दुनिया भी रावण राज्य है। क्यों? मनुष्य जैसा बुद्धिशाली कोई और प्राणी नहीं है, बहुत बुद्धिमान है। आज मनुष्य ने विज्ञान की शक्ति से क्या नहीं किया, आकाश मार्ग से उड़ सकता है, सबमरीन के द्वारा समुद्र मार्ग से ट्रैवल कर सकता है कि नहीं कर सकता है, रावण की तरह। मनुष्य जैसा भक्त भी कोई नहीं मिलेगा, खूब भक्ति कर रहा है, गली गली में जाओ कितने मंदिर मिलेंगे एक गली में, वो भक्ति कर रहा है। अब गणेश जी के समय में देखा इतना पानी था बॉम्बे में, तो वो भी भक्ति करने दौड़ रहे थे गणेश जी के मंदिर में। गए कि नहीं गए? तो मनुष्य जैसा भक्त भी कोई नहीं मिलेगा, मनुष्य जैसा शक्तिशाली कोई नहीं। मिसाइल पावर है ना, पृथ्वी अस्त्र, मिसाइल्स के नाम भी क्या है, अग्नि अस्त्र, वायु अस्त्र, यही तो मिसाइल्स के नाम है, ब्रह्मास्त्र निकाला भी है ना। और मनुष्य जैसा धनवान भी कोई नहीं। रात्रि के समय में अगर बड़े शहरों का नजारा देखे तो सोने की लंका जैसा चमकदार है बॉम्बे, कैसी है ना? सोने की लंका चमकती है रात को, कोलाबा कैसे चमकता है, चमकता है कि नहीं चमकता है? हाँ, तभी तो कहा कि मगर हार्ट इतना चमकता हो तो बाकी कितना चमकता होगा। नेकलेस चमकता है ना वहां, तो नेकलेस है पूरा, मरीन ड्राइव नेकलेस है पूरा, है ना। तो बॉम्बे जैसा चमकदार, कल रावण की सोने की लंका हो गई ना, रावण की सोने की लंका नहीं हो गई, ग्लैमर की दुनिया है। अरे रावण कहाँ बैठा है पता है आपको? वो कहा जाता है कि जब कलयुग आया तो कलयुग ने दस्तकत दी, तो उस समय परीक्षित राजा का राज्य था। तो परीक्षित राजा ने पूछा कौन, तो कहा मैं कलयुग। तो कहा क्या चाहते हो, तो कहा आपके राज्य में थोड़ा सा स्थान चाहता हूँ। परीक्षित राजा ने मना कर दिया कि मैं जानता हूँ तुम कैसा है, मैं तुम्हें अपने राज्य में स्थान नहीं दूंगा, नहीं तो तुम एकदम सुख शांति खत्म कर देगा। तो कलयुग ने कहा देखो मेरा आने का वक्त हो गया है, तुम स्थान नहीं देगा तो मैं जबरदस्ती ले लूंगा, इसलिए तुमसे स्थान मांग रहा हूँ कि स्थान तो दो मुझे, थोड़ा और चलाऊं या पूरा हो गया टाइम, चलाएं? अच्छा, तो इसीलिए जब परीक्षित राजा ने कहा कि मैं नहीं दूंगा तुझे, तो उसने कहा अगर नहीं देंगे तो मैं जबरदस्ती आ जाऊंगा, इसलिए स्थान मांग रहा हूं। तो परीक्षित राजा ने कहा ठीक है तुम्हें मैं तीन स्थान देता हूं। कौन सा? तो कहा एक जुआ खाना, वहां से बाहर नहीं निकलना, जुए खाने के अंदर रहना, है ना। दूसरा तो कहा शराब खाना, वहां से बाहर नहीं निकलना, बार से बाहर नहीं आना, तुम बार में ही रहना, है ना, ठीक है। तीसरा स्थान तो कहा वैश्यालयों में, वहां से बाहर नहीं आना, है ना, वहां ही रहना, ठीक है। कहा एक स्थान और दे दो, और एक स्थान और दे दो। तो परीक्षित राजा सोच में पड़ गया, तो कलयुग ने कहा मैं बताऊं? तो कहा बताओ कौन सा स्थान तुझे चाहिए। तो कहा सुवर्ण में स्थान दे दो, सोने में। तो कहा ठीक है, जा दिया तुझे। उसने बिना सोचे दे दिया, और उसने मुकुट पहना था, वहीं बैठ गया, और वहां से बैठ के क्या करता है, सबका दिमाग घुमाना चालू किया, सबका दिमाग घुमाना चालू कर दिया। और घुमाया तो ऐसा घुमाया कि कलयुग शराब खाने से बाहर आ गया, घर में आ गया। घर में आजकल क्या रखते हैं, बार रखते हैं ना घर में भी, कलयुग को रखा है ना घर में। अच्छा, फिर उसके बाद जुआ घर में खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं? खेलते हैं कि नहीं खेलते? रमी खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं? खेलते हैं, खेलते। देखो मोहिनी दीदी को भी पता है, सबके घर में रमी खेला जाता है, है? खेल रहे हैं ना। तो घर में आ गया कलयुग, और वैश्यालय भी घर में आ गया कि नहीं आया? तो इसीलिए कहा कि घर घर के अंदर, और जितना सोना इकट्ठा करते जाते तो कलयुग बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो इसीलिए कहा कलयुग तो घर घर में आ गया। कहां कलयुग नहीं है, कलयुग घर घर में प्रवेश कर चुका है, हर एक के दिमाग में बैठ करके गेम खेल रहा है ना, यही कर रहा है ना। तो इसीलिए कलयुग जब घर घर में आ गया तो हर प्रकार की बुराइयां चरम सीमा को पहुंच गई। हर इंसान इसीलिए बंधन महसूस करता है, बॉन्डेज में है। किसी को व्यसनों का बंधन है, किसी को बुरी आदतों का बंधन है, किसी को बुरे संस्कारों का बंधन है, स्वभाव का बंधन है, हर प्रकार की बुराई चरम सीमा पर पहुंच गई है। मनुष्य आत्मा बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण हर प्रकार की बुराइयों का शिकार हो गया। टेंशन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, आलस, भय, स्वार्थ, और देखो मनुष्य के शकल तो देखो, विकृत, इतना विकृत हो गया है। और ईश्वर का परिचय तो है नहीं, तो इसीलिए अब किसको याद करे भगवान के रूप में। पहले तो देवताओं को याद करता था, अब तो देखो तो गंगा की पूजा कर रहा है ना, या पानी की पूजा कर रहा है, कहां देखो पेड़ों की पूजा कर रहा है, कहां देखो सूर्य की पूजा कर रहा है, कहां देखो जानवरों की पूजा कर रहा है, किस किस की पूजा करने लग पड़ा। न खुद का परिचय, न खुदा का परिचय, पहले फिर भी देवताओं की पूजा, अब तो किस किस की पूजा कर रहा है। जब ऐसी हालत हो जाती है तब भगवान कहते हैं अधर्म अपनी चरम सीमा को प्राप्त हो चुका, तो यदा यदा ही धर्म से, तो भगवान को भी इस संसार में आना पड़ता है। अब कलयुग बच्चा नहीं है, लेकिन मनुष्य कह नहीं नहीं अभी तो कलयुग को बहुत साल पड़े, कितने साल बाकी है, तो 432,000 साल पड़े, अभी तो 40,000 गया है, अभी तो 432,000, अब सोचने की बात है। इसलिए कलयुग बच्चा है, 40,000 ही खाली पूरे हुए, अब सोचने की बात है कि बचपन अवस्था में ये हालत हो तो बुढ़ापे में क्या होगा। इसीलिए अब कलयुग कोई बच्चा नहीं है, थोड़ा सा बचा है, बच्चा नहीं है बचा है। वो कवि प्रदीप जी की गीत की लाइन याद आती है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया मनुष्य, कितना बदल गया इंसान। दूसरा एक गीत भी याद आता है, श्री रामचंद्र कह गए सिया से, क्या कह गए, ऐसा कल युग आएगा जहाँ क्या नहीं होगा। तो उसमें जो कलयुग की निशानी बताई है गरुड़ पुराण में, वो तो अभी प्रैक्टिकल में दिखाई दे रही, पुड़ियों में अनाज बिकेगा, केशों का श्रृंगार होगा। आजकल हेयर स्टाइल के पीछे कितने खर्चा करते हैं मनुष्य, कितनी इनकम जाती है एक हेयर स्टाइल और नाखून, नाखून के पीछे कितना खर्चा कर रहे हैं, सोचने की बात है कि क्या हो रहा है। जो कलयुग की निशानी बताई, अंतिम निशानी, वो तो प्रैक्टिकल में दिखाई दे रही है। तो अब कौन सा कलयुग बच्चा है, इसलिए अब बच्चा नहीं है, अब थोड़ा सा बचा है। विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है कि जिस तरह पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, जिस तरह ग्रीन हाउस इफेक्ट होने लगी है, ओजोन लेयर्स के होल्स बढ़ते जा रहे हैं, कहते अभी इतना बड़ा होल हो गया पूरा ऑस्ट्रेलिया खंड जितना, जिस कारण से सूर्य की डायरेक्ट रोशनी पृथ्वी पर आ रही है और ऐसी बीमारियां पैदा होने लगी है, और जो ऑक्सीजन का सोर्स है वही कटता जा रहा है। एक समय मैं देहरादून गई थी, देहरादून में सबसे बड़ी फॉरेस्ट का ये है, तो वहां पर जब गए तो मुझे म्यूजियम दिखा रहे थे, फॉरेस्ट की हिस्ट्री बता रहे थे। तो मैंने उनको पूछा कि जिस तरह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, ये पॉपुलेशन को जीवित रहने के लिए कितना परसेंटेज फॉरेस्ट होने चाहिए, तो कहा ये पॉपुलेशन को जीवित रहने के लिए कम से कम 33% फॉरेस्ट होने चाहिए। तो मैंने उनको पूछा अभी कितना फॉरेस्ट है इंडिया में, तो उन्होंने मुझे बताया ऑन पेपर 14%, प्रैक्टिकल में 11%। और अगर ये 9% हो गया तो दुनिया खत्म हो जाएगी, माना मनुष्य सर्वाइवल नहीं है। और इसीलिए रात्रि के समय में सिर्फ 2% ऑक्सीजन होता है, क्योंकि पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन लेते हैं, इसलिए सिर्फ 2%। अब 11 से 9 हो गया तो ये 2% भी खत्म हो जाए, इसलिए लोगों को रात में अस्थमा, ब्रेथलेस हो जाते हैं, साइलेंट अटैक आता है। क्यों? रात में ही नींद में ही चले जाते हैं, क्यों? ऑक्सीजन नहीं है। और 9% हो गया तो ऑक्सीजन और भी नहीं, इसलिए लोगों ने पेड़ों की पूजा की, और उसमें भी खास करके पीपल की पूजा की। क्यों? क्यों पीपल की पूजा करते हैं? क्योंकि पीपल एक ही पेड़ ऐसा है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, इसीलिए लोग उसकी पूजा करके सोचते हैं कि उसको बचाना चाहिए, 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है। तो कहने का भावार्थ के साइंस भी अभी इस बात की पुष्टि कर रहा है कि नेचर इतना इम्बैलेंस हो रहा है, इसलिए बड़े से बड़े पैमाने पर भूकंप आएंगे, बड़े से बड़े पैमाने पर सुनामी होंगी, चक्रवात आएंगे, अभी अमेरिका में चल रहा है ना, चक्रवात चल रहा है, और बड़े से बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी फटेगी। और जो मिसाइल्स बॉम्ब्स बनाए हैं वो रखने के लिए तो नहीं बनाए, है ना? अच्छा, कितना भी यूनाइटेड नेशन ट्रीटी साइन करा ले कि भाई बॉम्ब का प्रयोग नहीं करना है, लेकिन आजकल लोगों को सिजोफ्रेना की बीमारी तो कभी भी हो जाती है। और जो व्यक्ति वो कंप्यूटर के पास बैठा है, जहां बटन दबाने का है मिसाइल्स को छोड़ने के लिए, वो अगर सिजोफ्रेनिक हो गया तो क्या होगा? उसकी कोई गारंटी है कि वो सिजोफ्रेनिक नहीं हो सकता है? है कोई गारंटी? और सिजोफ्रेनिक अटैक उसको आ गया तो सोचेगा दबा दो बटन, खत्म करो खेल, और क्या होगा? सारे मिसाइल्स एक बटन पर तो है, शुरू हो जाएंगे। इसलिए कहा जाता है मैन प्रपोजेज, अब गॉड कहता है ये सृष्टि डिस्पोज ऑफ करनी है मुझे। अब डिस्पोज करना है तो कभी भी उसको मेंटल अटैक आ सकता है कि नहीं आ सकता है? नर चाहत कुछ और, होवत कुछ और, है ना? इस तरह से धीरे धीरे जो परमात्मा ने कहा यदा यदा ही धर्मस्य, कि संसार में मैं आता हूँ, संसार में भी, भारत में भी एक साधारण मनुष्य तन में, और आकर के ज्ञान और योग की शिक्षा देकर यही कहते हैं कि चलो बच्चे, वी आर ऑन अ रिटर्न जर्नी नाउ, घर जाना है, अब घर जाना है। अब घर जाने के लिए भगवान भी सिर्फ दो बातें कहते हैं। कौन सी दो बातें कहते हैं? आत्म शुद्धिकरण करो, योगी बनो, पवित्र बनो। लेकिन जब ये बात कहते हैं तो लोग क्या कहते हैं? अरे बहन जी, सारे लोग पवित्र हो गए तो दुनिया कैसे चलेगी, है ना? दुनिया कैसे चलेगी? अरे भगवान के पास सारी प्लानिंग है दुनिया कैसे चलाएं, हमें चिंता करने की जरूरत है नहीं। भगवान की आज्ञा को सिर्फ पालन करें, भगवान के पास पूरी प्लानिंग है, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। क्योंकि अब समय भी सिग्नल दे रहा है कि पवित्र बनो, आत्म संयम धारण करो। कैसे सिग्नल दे रहा है? पहला सिग्नल कौन सा है समय का? सबसे ज्यादा बीमारी कौन सी है? एड्स, जिसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए समय भी सिग्नल दे रहा है आत्म संयम को जीवन में धारण करो। अगर संयम नियम नहीं है तो ये दुनिया विनाश की ओर ही जा रही है। लेकिन फिर भी मनुष्य इस सिग्नल को नहीं समझ रहा है, तो समय ने दूसरा सिग्नल दिया। कौन सा? कि आज की दुनिया के अंदर न्यूज़पेपर तो हर रोज पढ़ते हैं ना, रोज पढ़ते हैं ना, कौन सी खबर रोज छपती है? क्राइम्स की, क्राइम में भी कौन से क्राइम की खबर रोज छपती है? रेप्स की, है ना, रेप्स की खबर रोज छपती है। कोई न्यूज़पेपर ऐसा नहीं जहां रेप्स न हो रहा हो, ये खबर न हो। और इतनी विकृति आ गई कि छोटे छोटे बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो गए, है ना। इसीलिए शास्त्रों में भी ये बात दिखाती है कि रावण जैसा, रावण इतना शक्तिशाली था, सीता जी को सम्मोहित करके ले आया, लेकिन अपने महल में नहीं रख सका, बगीचे में रखना पड़ा। और सीता जी के पास अपने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए कौन से शस्त्र थे? एक घास का तिनका उठा करके उसने रावण को चैलेंज कर दिया कि रावण, इस घास के तिनके से आगे तूने एक कदम भी बढ़ाया तो जल जाएगा, इतनी शक्ति है। कौन सी शक्ति थी उसके पास? 14 साल के ब्रह्मचर्य व्रत की शक्ति थी, ब्रह्मचर्य व्रत की शक्ति थी, है ना। इसीलिए आज अगर समय ये सिग्नल दे रहा है तो ऐसे समय में सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए कौन सा शस्त्र चाहिए? पवित्रता, ब्रह्मचर्य की शक्ति चाहिए। रावण जैसा रावण भी सीता जी को हाथ नहीं लगा सका। इसीलिए भगवान कहते हैं योगी बनो, पवित्र बनो, क्योंकि यही एकमात्र कवच है जो आपको सुरक्षित रखेगा, नहीं तो कोई व्यक्ति किसी की रक्षा करने की समर्थि नहीं रखता है इस संसार के अंदर। तब कई बार कई लोग पूछते हैं हमें, ऐसे समय में भगवान मदद क्यों नहीं करता है? भगवान मदद करना चाहता है, इसीलिए कहता है कि योगी बनो, पवित्र बनो। क्यों? क्योंकि जैसे दुनिया में कहा जाता, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में रहता है। ऑर्डिनरी बर्तन होता है, फट जाता है, बर्तन फट जाता है, इतना पावरफुल दूध होता है। ठीक इसी तरह परमात्मा परम पवित्र है। परमात्मा परम पवित्र की मदद अगर मिले तो ये शरीर भी फट जाएगा। इसीलिए वो कहते हैं मेरी मदद चाहते हैं तो मेरे जैसा बनने का प्रयास करो, आप भी पवित्र बनो तो उसकी मदद को स्वीकार कर सकेंगे, फट नहीं जाएंगे। इसीलिए भगवान मदद करना चाहता है, तभी कहता है योगी बनो, पवित्र बनो, तो उसकी मदद को स्वीकार कर सकेंगे, नहीं तो नहीं कर सकेंगे। लेकिन तब फिर सवाल आता है मनुष्य क्या कहे, फिर दुनिया कैसे चलेगी? आज से 2000 साल पहले जीसस का जन्म कैसे हुआ? जीसस के लिए कहा जाता वर्जिन मेरी, मेरी कुंवारी थी, फिर भी जीसस को जन्म दे सकी, है ना। इसीलिए मदर मेरी का गायन है, उसके चर्चेज मिलेंगे, उसके पिता का कोई गायन ही नहीं है क्योंकि उसका पिता ही नहीं है। जोसेफ भी बाद में लोगों ने कहा कि भाई तुम अगर जीसस को जन्म देना है तो कम से कम एक फादर जरूर हो, इसलिए बाद में उसने शादी किया उसके साथ, लेकिन फिर भी उसके कोई चर्च नहीं बने, मदर मेरी के चर्च बने, फादर का कोई चर्च नहीं बना, क्योंकि मदर मेरी ही उसका फादर और मदर दोनों है, जन्म देने वाली, है ना। तो इसीलिए कहा, अभी तो साइंस भी इस बात की पुष्टि करता है। थोड़े समय पहले मैं डिस्कवरी पर देखा, एयरपोर्ट पर हम जब बैठे थे, फ्लाइट लेट था तो डिस्कवरी चैनल चल रही थी, तो उसमें दिखाया कि नारी को कहा ही जाता है कि भगवान की संपूर्ण रचना, क्योंकि नारी के बोन मैरो में ही स्पर्म तैयार होते हैं, इसलिए नारी अपने आप में सक्षम है जन्म देने के लिए, उसको किसी की आवश्यकता नहीं है। ये साइंस का लेटेस्ट रिसर्च है कि उसके बोन मैरो में ही वो स्पर्म भी तैयार करती है और उसी से उसको जन्म देने की क्षमता उसके, इसलिए ईश्वर वुमन के लिए कहा जाता है कि वो संपूर्ण है, ईश्वर की रचना संपूर्ण इसलिए है कि उसको किसी का आधार की आवश्यकता नहीं है। ये तो कलयुग में मनुष्य के अंदर ताकत नहीं रही, नारियों में भी ताकत नहीं रही, तो पुरुष का आधार लेना पड़ा, बाकी सतयुग के अंदर उसको आवश्यकता नहीं है। कई लोग पूछते हैं फिर क्या प्रूफ है? भगवान जानता था कि कलयुगी मनुष्य हर बात में प्रूफ जरूर मांगेगा, इसलिए उसने कलयुग में एक प्राणी ऐसा रखा है जो आज भी पवित्र विधि से उत्पत्ति करता है, मोर को रखा है ना। कि कहा जाता है कि मोर के आंसू से ही वो बच्चा पैदा करता है पवित्र विधि से। तो इसीलिए कहा कि परमात्मा ने पूरा प्लानिंग किया है कि आगे चल करके दुनिया कैसे चलनी है। इसीलिए श्री कृष्ण के ताज में मोर का पंख है। ये डेकोरेशन के लिए नहीं लगाया है, ये सम्मान दिया है श्री कृष्ण ने कि जितना पवित्र श्री कृष्ण की आत्मा है उतना कलयुग में भी मोर पवित्र है, इसीलिए मोर का पंख लगाकर उसने सम्मान दिया है, उसको अवार्ड दिया है श्री कृष्ण ने भी, इसीलिए मोर का पंख है और किसी प्राणी का और किसी पक्षी का पंख नहीं लगाया है। तो इसीलिए भगवान भी समय भी यही सिग्नल दे रहा है, योगी बनो पवित्र बनो, है ना। तब किसी ने हमको कहा कि नहीं बहन जी, एक बार मेरा कार्यक्रम था एक जगह पर, काफी लोग आए थे सुनने के लिए। 7 दिन का कार्यक्रम था, बहुत लोग इकट्ठे हुए थे। जब लास्ट डे आए तो एक बुजुर्ग भाई खड़े हुए, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने कहा बोलो, आए स्टेज पर। कहने लगा कि पहली बार मैंने ब्रह्मा कुमारी का नॉलेज सुना, वो क्या कहना चाहते हैं, और समझा कि इनकी एक एक बात में सत्यता है। लेकिन आज दिन तक हम उस गली से भी नहीं गुजरते थे जहां ब्रह्मा कुमारी का सेंटर होता था। मैंने कहा भाई ऐसी क्या बात थी, तो कहा कि इनके बारे में गलत फहमी इतनी थी समाज के अंदर कि ये भाई बहन बना देती, इसलिए वहां से भी नहीं जाते थे। मैंने कहा ब्रह्मा कुमारियों को क्या पड़ी है किसी को भाई बहन बनाने की, हम नहीं बनाते हैं। आप लोगों को भी किसी ने कहा होगा वहां जा रहे हैं ठीक ठाक वापस आना, है ना, कहा था कि नहीं कहा था, सही बात है ना। तो इसीलिए कहा, तो मैंने कहा एक बात बताओ, उस बुजुर्ग भाई से मैंने पूछा एक बात बताओ कि आप मंदिर रोज जाते थे, तो बोले हाँ जाते थे रोज मंदिर। मैंने कहा कि आप अकेले जाते थे, अपनी वाइफ के साथ भी जाते थे, बोले वाइफ के साथ जाता था रोज, हम दोनों ही जाते थे। तो मैंने कहा एक प्रार्थना तो रोज गाई होंगी आपने, कहा कौन सी। मैंने कहा भगवान से ये प्रार्थना तो किया होगा कि तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो कहा रोज किया। मैंने कहा जब आप प्रार्थना कर रहे थे तो आपकी वाइफ ने भी यही प्रार्थना गाई कि कुछ और गाया, कहा उसने भी यही गाया। मैंने कहा आपकी वाइफ ने ये तो नहीं कहा मेरे पति के माता पिता तो मेरे सास ससुर कभी कहा भगवान को, हा? तो जब पति ने भी वही गाया पत्नी ने भी वही गाया तो उस समय आप कौन बन गए थे। तो मैंने कहा ये प्रार्थना ब्रह्मा कुमारियों ने सिखाई थी, कहा नहीं, फिर क्यों ब्रह्मा कुमारियों को बदनाम करें। तो कहते सॉरी, हाँ ठीक है ना। तो इसीलिए आज के बाद मैंने कहा इस गलत फहमी को दूर करो, ब्रह्मा कुमारियों ने ऐसी कोई प्रार्थना नहीं सिखाई। हाँ ईश्वर का संदेश जरूर देते हैं, मानना न मानना आपकी मर्जी, फिर दोष नहीं देना कि भाई हमें तो संदेश क्यों नहीं दिया। अब सत्य बात बताते थे, भगवान क्या कहता, अब हमने सत्य बता दिया, अब करना न करना आपकी मर्जी, है कि नहीं। फिर भगवान को दोष नहीं देना, क्योंकि भगवान जो नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं ना वो इलेक्शन से नहीं करते, सिलेक्शन से करते हैं, है ना। यहाँ आप लोग जो आए हैं ये आप अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, ऊपर वाले ने सिलेक्ट किया है, क्योंकि उसने जरूर कोई ना कोई अच्छी चीज आप में देखी है तब आपको सिलेक्ट करके यहाँ ले आए। अब यहाँ से जाने के बाद किसकी मर्जी पर चलेंगे, किसकी मर्जी पर चलेंगे, ऊपर वाले की या अपनी मर्जी पर, नहीं अब आपकी मर्जी, अब आपकी मर्जी होगी। ऊपर वाला तो आपको यहाँ तक ले आया, संदेश दे दिया, अब आपकी मर्जी होगी कि अभी आपको क्या करना है, बोलो हाँ, अब आपको क्या करना है, दुनिया की मत पर चलना है कि ईश्वर की मत पर चलना है, ये आपको चूज करना है, ये आपका चॉइस होगा कि आपको क्या करना है। ठीक है, ठीक है, हाँ थैंक यू, ओम शांति। थैंक यू थैंक यू ओम शांति। बहुत शांति, बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ अच्छा लगा ना।
और कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन है अभी? ओके
फिर आपका घूमने का ही रह जाएगा। हाँ जरूर हो गई ना, भरम दूर हो गया। अच्छा चलो
कुलाबा आए हुए लोगों की तरफ से हम लोगों ने बहुत अच्छा क्लास अटेंड किया। उषा बहन ने बहुत सारे सवाल जो लोगों के जहन में थे जिनका जवाब उनको नहीं मिलता था वो बिना पूछे दे दिया, और इनकी जो शैली है वो इतनी अच्छी है कि लोग मंत्रमुग्ध होकर के पिन ड्रॉप साइलेंस मेंटेन करके सुनते हैं, इसके हम सभी कायल हैं। नहीं वो समय तो कम ही हमेशा लगता है, तो हम अपने कोलाबा सेंटर की तरफ से आपको गुजारिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी एक कार्यक्रम कोलाबा में भी रखें और हमें दोबारा ज्ञान दें हमसे, और कल हो सके तो एक कार्यक्रम और रखें हमसे।
एक मिनट योग में बैठे उससे पहले मैं सुन रही हूँ कि सारे क्वेश्चंस हल हो गए हैं, लेकिन फिर भी शाम को जो दोपहर में क्वेश्चन आंसर सेशन था ना उसको हमने शाम को किया है, और शाम वाला सेशन जो शीलू बेन कराने वाले थे वो अभी होगा। तो अभी 10:30 से 11 आप योग करेंगे, क्योंकि अभी आप जाएंगे टाइम लगेगा ना, 10:30 से 11 योग करेंगे और 11 बजे शीलू बेन क्लास कराने आएंगे, और उसके बाद गॉडली गिफ्ट होगी, और शाम को 5:30 से 6:30 करुणा भाई जी आएंगे वो क्लास लेंगे, और 6:30 से 7:30 तक रामनाथ भाई जी होंगे जो क्वेश्चन को आंसर करेंगे। तो बॉक्स रखा है हमने वहां पर, अभी भी कोई क्वेश्चन हो तो उसमें डाल सकते हैं, और शाम को फिर वो आपको आंसर करेंगे। तो दोपहर के सेशन तक गार्डली गिफ्ट तक इसमें क्वेश्चन डल जाने चाहिए, क्योंकि फिर ये बॉक्स जाएगा रामनाथ भाई के पास, ठीक है? और रात को डॉक्टर सचिन भाई जी। शांतिवन का चलो ओम शांति।